आज के मुख्य समाचार में विपक्ष के नेता पीटर डटन मौजूदा सरकार से आतंकवाद विरोधी कानूनों में सुधार लाने की कर रहे हैं मांग। विक्टोरिया में फ्रंटलाइन सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को $3,000 का प्रोत्साहन भुगतान होगा प्राप्त। और खेल में भारत की पूर्व कप्तान मिथाली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। आज के न्यूज बुलेटिन में नेता प्रतिपक्ष पीटर डटन सरकार से मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद रोधी कानून संसद की शुरुआत में पेश करें। बीते दिन हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि दो आतंकवाद संदिग्धों की नागरिकता को फिर बहाल किया जाए। बीते साल गृह मंत्री ने उनकी नागरिकता रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि कानून का वह अनुच्छेद जो मंत्री को नागरिकता रद्द करने का अधिकार देता है वह गैर संवैधानिक है। इसका यह भी अर्थ है कि अब तक इस सेक्शन के चलते जितने लोगों ने अपनी नागरिकता गंवाई वे अब इसे फिर से हासिल कर सकते हैं। अटर्नी जनरल मार्क ड्राइफस का कहना है कि वे इस निर्णय की समीक्षा करेंगे और यह कि सुरक्षा खतरों को संभालने के लिए उचित उपाय कर दिए गए हैं। पीटर डटन ने सिडनी रेडियो 2GB से कहा कि यह निर्णय देश के लिए खतरा साबित हो सकता है।
The government needs to take the advice to look at the judgment and to work out what the legislative response needs to be. And this needs to happen as a matter of urgency because we don't want these people paroled and back out on the street and having the opportunity to commit a terrorist offence.
उधर ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने ऑस्ट्रेलियाई गैस कंपनियों का बचाव करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा के बढ़ते दामों को कम करने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है। लेबर सरकार ने गैस कंपनियों पर पड़े कर नहीं लगाए। श्री बोवन का कहना है कि इन कंपनियों के पास ग्राहकों के साथ न्याय करने का सोशल लाइसेंस है। श्री बोवन ने एबीसी से कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ऊर्जा समस्याएं मुख्यतः कोयला नियंत्रण बिजली घरों के ना चलने की वजह से है, एक ऐसी समस्या जिसमें गैस मदद कर सकती है।
When we called the gas companies, they responded. The gas supply guarantee was triggered last Tuesday night. That happened. It worked. We got more gas into the system. But, you know, to the point about social license and gas companies needing to respond, yes, they absolutely need to. They absolutely should, and they need to be cognizant of their domestic responsibilities. And they have responded when the government has required them to do so.
यह तब आता है जब मंत्री बोवेन ने प्रदेशों के अपने समकक्षों के साथ गोलमेज वार्ता की, जहां प्रदेश मंत्रियों ने इस बात की हामी भरी कि वे भविष्य में होने वाली ऊर्जा कमियों के लिए कंपनियों को अभी ही गैस बचाकर रखने की अधिक ताकत देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने 12 से 15 वर्ष के योग्य बच्चों के लिए कोविड बूस्टर खुराक लेने की सलाह की घोषणा की है। The Australian Technical Advisory Group on Immunization, ATAGI, ने यह सलाह संवेदनशील स्वास्थ्य वाले बच्चों के लिए जारी की है। इसमें करीब 1,20,000 बच्चे बूस्टर खुराक के लिए योग्य हो जाएंगे। इस श्रेणी में कम प्रतिरोधक शक्ति वाले बच्चे, वे बच्चे जो विकलांग हैं और जिनकी कई स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं या जिन्हें ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ता हो शामिल है। यह खुराक 14 जून से उपलब्ध होगी। ATAGI ने इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अभी बूस्टर खुराक की सलाह नहीं जारी की है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के गेमिंग नियामकों ने प्राइवेट इक्विटी ग्रुप ब्लैकस्टोन की क्राउन कैसीनो को खरीदने की $8.9 बिलियन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हालांकि यह शर्त रखी गई है कि विक्टोरियन गैम्बलिंग एंड कैसीनो कंट्रोल कमीशन के अनुसार क्राउन मेलबर्न के बोर्ड की स्वतंत्र बहुमत होनी चाहिए। बीते साल क्राउन मेलबर्न ने अपनी गेमिंग लाइसेंस बनाए रखने पर जाँच बिठाई गई थी और उस जाँच के नतीजे के बिना पर ही शर्त रखी गई है। विक्टोरियन गैम्बलिंग एंड कैसीनो कंट्रोल कमीशन की अध्यक्ष फ्रैन थॉर्न कहती हैं कि इस टेकओवर की स्वीकृति कड़े नियमों के साथ दी गई है, जहां कंपनी पर अधिक नियंत्रण रखा जाएगा ताकि वह कैसीनो ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष कैसीनो बना रहे। अमरीकी लोकसभा ने हाल में हुई सार्वजनिक गोलीबारी की घटनाओं के बाद मतदान कर सेमी ऑटोमेटिक हथियार खरीदने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। यह बिल 223 से 204 के अनुपात से पारित हुआ, पर इस बिल का अमरीकी सेनेट में पारित होना मुश्किल है, जहां इसे 10 रिपब्लिकन वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। सभा की एक समिति ने हाल में हुई गोलीबारी के पीड़ितों और पीड़ित परिवारों की हृदय विदारक गवाहियां सुनी हैं। इसमें 11 साल की मिया सेरेलो भी शामिल हैं, जिन्होंने टेक्सस के उवाल्डे प्राइमरी स्कूल में खुद को बचाने के लिए अपने क्लासमेट के मृत शरीर से खुद को ढका था।
There's a door between our classrooms, and he went through there and shot my teacher and told my teacher goodnight and shot her in the head. And then he shot some of my classmates and the whiteboard. When I went to the backpacks, he shot my friend that was next to me, and I thought he was gonna come back to the room. So I grabbed the blood and I put it all over me.
न्यू साउथ वेल्स में पैलिएटिव केयर यानी वह स्वास्थ्य सेवा जो ला इलाज रोगियों को दी जाती है के लिए अगले 5 सालों में अतिरिक्त $743 मिलियन की फंडिंग दी जाएगी। राज्य प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने इस घोषणा को उनके जीवन की सबसे अहम बजट घोषणा बताया है। इस फंडिंग में अतिरिक्त 600 देखभालकर्ता और अस्पतालों में पैलिएटिव केयर की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी। ये फंडिंग राज्य में हर साल की जाने वाली 300 मिलियन की फंडिंग के अतिरिक्त है। प्रीमियर ने इस फंडिंग का वादा स्वेच्छा मृत्यु की बहस के दौरान किया।
It became very clear to me through the testimonies of many people and many members of parliament during that debate that there were not sufficient palliative care services available.
उधर विक्टोरिया के फ्रंटलाइन सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को $3,000 की धनराशि काम पर बनाए रखने और नए कामगारों को दी जाएगी। सर्दियों के मौसम के व्यस्त समय सार्वजनिक अस्पतालों और एम्बुलेंस में काम करने वाले लोगों के लिए कैश और मुफ्त खाने की सुविधा दी जाएगी। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लोगों को ये धनराशि दी जाएगी, जिसमें कपड़े धोने वाले कर्मी, सफाई कर्मी और खाना बनाने वाले स्टाफ भी शामिल होंगे। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने ये भुगतान घोषणा स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन देने के लिए तैयार किए गए $353 मिलियन के पैकेज के अंतर्गत की।
The most important thing that we can do is to stand with our nurses and paramedics, our doctors, our cooks and cleaners, ward clerks, everyone across the whole team. And that's why today we're very pleased to announce a $3,000 winter retention and surge payment for each and every one of our hospital staff team.
मुद्रा दर की जानकारी में आज के दिन अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 72 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत ₹55.67 है। खेल समाचार में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने बुधवार को खेल के सभी फॉर्मेट्स प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मिताली ने अपने करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 7,805 रन बनाए, जो खेल के इस प्रारूप में रिकॉर्ड रन है। एक दिवसीय क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी औसत 50.68 रहा। इसके अलावा उन्होंने 12 टेस्ट और 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 23 साल उनके जीवन के सबसे संतोषजनक, चुनौतीपूर्ण और आनंददायक वर्ष रहे। अपने फैंस को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब बल्ला टांगने का सही समय आ गया है। उनके हिसाब से भारत की टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं जो टीम की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं और भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरा है। अब सुनते हैं कल यानी शनिवार के मौसम का हाल। पर्थ में एक दो बौछार होने की संभावना, यहाँ का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री। एडलेड में भी बरसात के आसार, वहाँ का न्यूनतम तापमान 9, अधिकतम तापमान 16 डिग्री। मेलबर्न में भी बारिश होने की आशंका, न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 14 डिग्री। कैनबरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहाँ का न्यूनतम तापमान 2, अधिकतम तापमान 11 डिग्री। सिडनी में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहाँ का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी और न्यूनतम तापमान रहेगा 6 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री। डार्विन में भी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जाएगा। उधर भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी और न्यूनतम तापमान 32 और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जाएगा। कल के मौसम के पूर्वानुमान के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।